اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کلندر شعور کے صفحہ نمبر 25 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ پچھلی ہم نے ریڈنگ میں یہ نوٹ کیا یا دیکھا کہ جانوروں میں بھی شعور، عقل و شعور موجود ہے۔ اس چیز کی وضاحت کے لیے حضور مرشد کریم کئی واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ جانوروں میں بھی عقل و شعور ہوتا ہے اور بعض معاملات میں وہ انسانوں سے بڑھ کر ہے، لیکن انسان کا شرف جو ہے وہ اصل میں اس کی غور و فکر کی صلاحیت ہے، اس کے اندر شعوری ارتقاء ہے، وہ غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے، ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ جانوروں کو جو شعور شروع سے عطا ہو گیا وہ وہی ہے، اور یہ ان کے اندر ان کی اپنی کوئی کمال نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے یا ان کی اپنی کوئی ایبلٹی نہیں ہے، ان کے اندر یہ شعور فطرت نے ان کو ودیت کر دیا ہے۔ مثلاً یہ آج ہم بارش کی آواز پڑھتے ہیں کہ ایک آسٹریلوی پرندہ کیوی اپنے رزق کے حصول کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ کافی دلچسپ ہے۔ جب کافی تلاش کے باوجود شکار ہاتھ نہیں لگتا تو یہ ایسی آواز نکالتا ہے جو بارش کی آواز سے مشابہ ہوتی ہے، یعنی اس کیوی کو قدرت نے یہ آواز عطیہ کی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی طرح، مطلب اگر آپ ویسے بارش کی ساؤنڈ حلق سے یعنی میمک کرنا چاہیں، نقل کرنا چاہیں تو بہت ہی دشوار ہے، لیکن اس پرندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بارش کی آواز سے مشابہ آواز نکالتا ہے، اور زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے یہ سمجھ کر کہ بارش ہو رہی ہے زمین سے باہر نکل آتے ہیں اور اس پرندے کی غذا بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسا طریقہ ہے۔ اسی طرح منافق لومڑی، ایک لومڑی اپنی چالاکی اور عیاری کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، جس دن اس کو آسانی سے شکار ہاتھ نہیں آتا تو بی لومڑی چالاکی پر اتر آتی ہے، جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر زمین پر لیٹ جاتی ہے اور سانس کھینچ کر خوب پیٹ کو پھلا لیتی ہے۔ پرندے اسے مردہ سمجھ کر اپنی خوراک بنانے کے لیے قریب آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پرندے لومڑی کو اپنی غذا بنائیں، لومڑی انہیں اپنی غذا بنا لیتی ہے۔ اب اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، یہ کیلے کے باغات۔ جے ایچ ولیم نے اپنی کتاب دی ایلیفنٹ میں دو نو عمر ہاتھیوں کا ذکر کیا ہے جو عموماً کھلے پھرتے تھے، لیکن ان کی گردنوں میں بلند آواز والی گھنٹیاں لٹکا دی گئی تھی تاکہ یہ معلوم ہوتا رہے کہ وہ کہاں ہیں۔ ایک روز یہ دونوں قریب کے تالاب کے کنارے گئے اور وہاں سے گیلی مٹی اٹھا کر اپنی اپنی گھنٹیوں میں بھر لی۔ نتیجتاً گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے کیلوں کے باغوں کا رخ کیا اور خوب جی بھر کر کیلے کھائے۔ اب اسی طرح ایک اور واقعہ سن لیجیے، ایک ترکیب کے عنوان سے ہے۔ دو ڈالفن ایک سانپ نما مچھلی جسے ایل کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چالاک ایل نے ڈالفنوں سے بچنے کے لیے اچانک غوطہ لگایا اور ایک سوراخ میں گھس کر پناہ گزین ہو گیا۔ اب ذرا ڈالفن کی ذہانت ملاحظہ فرمائیں کہ ان میں سے ایک نے ایسی مچھلی پکڑ لی جس کے منہ پر زہریلا ڈنک ہوتا ہے، اور دم سے پکڑ کر مچھلی کا سرا اس سوراخ میں داخل کر دیا جس میں ایل چھپا بیٹھا تھا۔ ایل نے جو زہریلی مچھلی کو دیکھا تو سوراخ سے نکل کر بھاگا اور کھیل دوبارہ شروع ہو گیا۔ یعنی آپ غور کریں کہ یہ ڈالفن یہ ایل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ حرکت۔ زندگی جو ہے یہ حرکت میں رہتی ہے، اور زندگی حرکت میں رکھنے کے لیے वो इस किस्म की मसरूफियात जानदार जो हैं वो अपना लेते हैं। अब एक और बड़ा जोरदार वाक्या है, हजरत ताजुद्दीन, बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे और कलंदर शौर के बानी, यानी कलंदर बाबौलिया रहमतुल्लाह अलैह, अपनी किताब तस्करा ताजुद्दीन बाबा में शेर की अकीदत का वाक्या और इस वाक्य की इल्मी तौजीह बयान करते हुए फरमाते हैं। शेर की अकीदत के उन्वान से लिखा है ये टॉपिक कि एक दिन नाना ताजुद्दीन वाकी शरीफ के जंगल भारत में चंद लोगों के साथ पहाड़ पर चढ़ते चले गए। नाना मुस्कुराकर कहने लगे, मियां जिसको शेर का डर हो वो चला जाए, मैं तो यहाँ जरा सी देर आराम करूँगा, ख्याल है कि शेर ज़रूर आएगा, जितनी देर कयाम करे उसकी मर्जी, तुम लोग जाओ खाओ पियो और मज़े करो। बाज लोग इधर उधर छुप गए और ज़्यादा चले गए। गर्मी का मौसम था, दरख्तों का साया और ठंडी हवा खुमार का तूफान उठा रही थी। नाना अब दबीज घास पर लेट चुके थे, आंखें बंद थी, फिजा में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। चंद मिनट गुजरे ही थे कि जंगल भयानक महसूस होने लगा। उसके बाद भी कुछ वक्फा ऐसा गुजर गया जैसे शदीद इंतजार हो। ये इंतजार किसी साधु, किसी योगी, किसी अवतार, किसी वली या इंसान का नहीं था, बल्कि एक दरिंदे का था जो कम अज कम मेरे जहन में कदम ब कदम हरकत कर रहा था। यकायक नाना रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निगाहें मतवज हो गई। उनके पैरों की तरफ एक तवीलुल कामत शेर ढलान से ऊपर चढ़ रहा था, बड़ी आहिस्ता खरामी से, बड़े अदब के साथ। शेर नीमवा आंखों से नाना ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देख रहा था। जरा देर में वो पैरों के बिल्कुल करीब आ गया। नाना गहरी नींद में बेखबर थे। शेर जबान से तलवे छू रहा था। चंद मिनट बाद उसकी आंखें मस्ताना बारी से बंद हो गईं। उसने अपना सर जमीन पर रख दिया। नाना ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अभी तक सो रहे थे। शेर ने अब जरा हिम्मत करके तलवे चाटना शुरू कर दिए। इस हरकत से नाना की आंख खुल गई, उठकर बैठ गए। शेर के सर पर हाथ फेरा, कहने लगे, तू आ गया, अब तेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं तुझे तंदुरुस्त देखकर बहुत खुश हुआ, अच्छा अब जाओ। शेर ने बड़ी ममनूनियत से दुम हिलाई और चला गया। मैंने इन वाक्यात पर बहुत गौर किया, ये हजूर कलंदर बाबौलिया लिख रहे कि मैंने इन वाक्यात पर बहुत गौर किया। ये बात किसी को मालूम नहीं कि शेर पहले कभी उनके पास आया था। मजबूरन इस अमर का यकीन करना पड़ता है कि नाना और शेर पहले से ज़हनी तौर पर रूशनास थे। ये जुमला नोट कर ले। अब रूशनासी का तरीका एक ही हो सकता है, अना की जो लहरें नाना और शेर के दरमियान रद्दो बदल होती थी वो आपस की मुलाकात का बायस बनती थी। यानी अना की लहरें अब हम नॉर्मली से पढ़ते हुए गुजर जाते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। मैंने इसमें शुरू में आपसे अर्ज किया था कि ज़ात का खेल है, ज़ात का मुतालिया, वो जो टॉपिक था ना सफ़ा नंबर 14 पे, ये उसी के ज़ेल में बात हो रही है। उसी को अना कहा है कि अना की जो लहरें, यानी ताजुद्दीन बाबा औलिया की ज़ात और शेर की जात के दरमियान कोई चीज इंटरेक्ट हो रही थी, उसको कहा कि अना की जो लहरें, शेर और नाना के दरमियान रद्दोबदल होती थी, वो आपस की मुलाकात का बायस बनती थी। यानी ये पहली मुलाकात नहीं थी, कई बार ये मुलाकात हुई। चूंकि इसमें ऊपर का जुमला देखे कि तू आ गया, अब तेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, यानी वो उनसे इलाज करवाता रहा था। वो किसी तकलीफ में था या जो भी था, उसकी मदद के लिए ताजुद्दीन बाबा औलिया वहाँ पे मुजस्सम या मुशक्कल होकर उसको पट्टी की या उसका कांटा निकाला या जो भी उसकी खिदमत की या उसने जो भी पुकारा उन्होंने उसकी मदद की। उसके बाद वो इजहार ममनूनियत के लिए, और उन्हें पहले से पता था कि वो आएगा, इसलिए उन्होंने उसे मौका दिया कि आओ मिल लो। इनमें ये सारी छोटी छोटी बातों का तरीका समझे, नोट करें इसको, कि नाना और शेर पहले से ज़हनी तौर पर रूशनास थे। रूशनासी का तरीका एक ही हो सकता है, क्या, कि अना की जो लहरें नाना और शेर के दरमियान रद्दोबदल होती थी, वो आपस की मुलाकात का बायस बनती थी। अब ये अना की लहरों की वजह से मुलाकातें होती थी। आरिफीन में कश्फ की रविश आम तौर पर यही होती है। आरिफों को ये जो कश्फ होता है उसका तरीका यही है कि वो जात की लहरों के जरिए रीड करते हैं। लेकिन इस वाक्य से मालूम हुआ कि जानवरों में भी कश्फ इसी तरह होता है। कश्फ के मामले में इंसान और दूसरी मखलूक की अक्सा है। लो, आप बड़ा कश्फ करके बड़ा तीर मारते हैं कि जी मुझे कश्फ हासिल हो गया। यहाँ पे उन्होंने साफ ही बता दिया कि ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। कश्फ का क्या है, मालूम होना। अगर आपकी जात दूसरे की जात का अहवाल जान सकती है तो इसी को कश्फ कहते हैं। और ये अगर जानवरों में हो रहा है, यकसा है। अब ये अना की लहरों की वजाहत आ रही है कि ये कानून बहुत फिक्र से जहन नशीन करना चाहिए। क्या कानून, कि जिस कदर ख्यालात हमारे जहन में दौर करते रहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा हमारे मामलात से गैर मुतालिक होते हैं। उनका ताल्लुक करीब और दूर की ऐसी मखलूक से होता है जो कायनात में कहीं ना कहीं मौजूद हो। अब यहाँ पे नोट करें क्या कहा, कि जो ख्यालात हमारे जहन में दौर करते रहते हैं, उनमें से बहुत ज्यादा हमारे मामलात से गैर मुतालिक होते हैं। अब आप कहेंगे कि जी हमें क्यों नहीं पता चलता। अरे भाई, हम बड़े मसरूफ लोग हैं, हमारे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। हम सांस पूरा नहीं लेते तो अपने जहन में आने वाले ख्यालात को पूरी तरह कैसे जान लेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपके शऊर और फहम की रसाई पहले तो आपके मादी जिस्म तक हो, फिर उसको समझते हुए आप ऊपर को उठते हुए अपने जहन को समझें, फिर उसके बाद रूह को समझें, फिर जात को समझेंगे। या अल्लाह करम करे और जात ये सारी चीजों के सारे मदारिज आपको समझा दे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे ख्यालात जहन में गर्दिश करते हैं, इसमें से कम हमारे मामलात से मुतालिक होते हैं और ज्यादातर ऐसे मामलात से या ऐसी मखलूक से उनका ताल्लुक होता है जो करीब या दूर हो, और वो कायनात में कहीं ना कहीं मौजूद होती है। अब उस मखलूक के तसव्वुरात यानी उनके आइडियाज, उनके कॉन्सेप्ट्स लहरों के जरिए हम तक पहुंचते हैं। जब हम उन तसव्वुरात का जोड़ अपनी जिंदगी से मिलाना चाहते हैं, यानी जब हम उन तसव्वुरात का ताना बाना या ताल्लुक अपनी जिंदगी के हवाले से सोचने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम कामयाब नहीं हो सकते। तो हजार कोशिशों के बावजूद नाकाम रह जाते। अब हजूर मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि अना की जिन लहरों का तज़करा हो चुका है, उनके बारे में भी चंद बातें गौरतलब है। पहली, کہ سائنسدان روشنی کو زیادہ سے زیادہ تیز رفتار قرار دیتے، لیکن انا کی لہریں اس سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں. روشنی کی رفتار اتنی تیز رفتار، روشنی اتنی تیز رفتار نہیں ہے کہ وہ زمانی اور مکانی فاصلوں کو منقطع کر دے، یعنی ٹائم اینڈ سپیس دونوں ڈسٹینسز کو وہ ختم کر دے. یہ روشنی نہیں کرتی. روشنی تو دیکھے نا، خود سورج سے 8 منٹ میں پہنچتی ہے، تو 8 منٹ میں 9 کروڑ کی سپیس طے کرتی ہے. اب 8 منٹ زمانیت ہے، 9 کروڑ میل مکانیت ہے. تو یہ روشنی مکانیت زمان و مکان کو کینسل نہیں کر سکتی. البتہ انا کی لہریں لا تناہیت میں ہر بیک وقت ہر جگہ موجود ہیں. اب آپ کو یہ دیکھیں، کلندر شعور کے ذیل میں اس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ذات کی لہریں لا تناہیت میں بیک وقت ہر جگہ موجود ہیں. اب یہ جملہ سن کر اگر کوئی بندہ فلم بنائے تو وہ لوسی نام کی فلم بنا لیتے ہیں. دیکھیں، اس نے سمجھا کہ میں پھیل گیا، اگر میں پورے کائنات میں پھیل جاؤں تو کیا ہوگا. اس پہ انہوں نے فلم بنا دی، لوگ اسے دیکھ دیکھ کے فیسینیٹ ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو یہاں پہ یہ فلمی سٹوریاں نہیں سنائی جا رہی، یہاں پہ آپ کو آپ کی اپنی پوری انجینئرنگ سے واقف کرایا جا رہا ہے کہ آپ کے پوری ذات سے لے کر یہ جسم تک کیا میکانزم کام کر رہا ہے. فرمایا کہ انا کی لہریں لا تناہیت میں، لا تناہیت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسا عالم جس کی کوئی حدیں نہیں ہیں، جس میں کوئی حد بندیاں نہیں ہیں، اس میں بیک وقت ہر جگہ موجود ہیں، اور زمانی اور مکانی فاصلے ان کی گرفت میں رہتے ہیں. بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ انا کی لہروں کے لیے زمانی اور مکانی فاصلے موجود ہی نہیں. روشنی کی لہریں جن فاصلوں کو کم کرتی ہیں، انا کی لہریں انہی فاصلوں کو بجائے خود موجود نہیں جانتی. یعنی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے جی، آپ سوچیں ذرا، سورج، اب دیکھیں 9 کروڑ میل دور چیز کھٹ سے آپ کے ذہن میں آتے. یعنی انا کی لہریں اس، اب روشنی کی رفتار سے چلتے تو یہ بات آپ کو 8 منٹ بعد سمجھ میں آتی، لیکن انا کی لہریں جو کائنات میں، اب آپ کہیں کہکشاں، تو پوری کہکشانی نظام آپ کے ذات کی لہروں کی زد میں ہونے کی وجہ سے کیا ہے، آپ کے ذہن میں ایک تصویر سی بن جاتی ہے. یہ ہے اس کا سارا لبے لباب. اگلا ٹاپک ہے خاموش گفتگو. انسانوں کے درمیان ابتدائے آفرینش سے، یعنی کہ شروع سے بات کرنے کا طریقہ رائج ہے. یعنی انسان آپس میں بات کرتے ہیں، اور وہ بات کیسے کرتے ہیں کہ آواز کی لہریں جن کے معنی متعین کر لیے جاتے ہیں، سننے والوں کو مطلع کرتی ہیں. اب یہ طریقہ اسی تبادلہ خیال کی نقل ہے جو انا کی لہروں کے درمیان ہوتا ہے. غور کریں، انا کی لہروں کے درمیان تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ اس کی نقل ہے. اور نقل بھی اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم آواز کی لہروں کے معنی متعین کرتے ہیں، پھر اس آواز کو ان معنی کی ادائیگی کے لیے منہ سے نکالتے ہیں. بیسیکلی تبادلہ خیال دو اناؤں کے درمیان ہو رہا ہے. اس بات کو سمجھیں، دو ذات दो जातों के दरमियान हो रहा है। अब हमारे यहाँ वो जातों का लफ्ज भी कहीं और ही इस्तेमाल हुआ हुआ है। एनीवे तो इसीलिए उसके लिए इतने बहुत सारे अल्फाज आ गए कि अना की लहरें। अब आप अना को समझ गए तो आप ये मजमून यानी कलंदर शौर को ज्यादा बेहतर अंदाज में डाइजेस्ट कर सकेंगे। हजूर मुर्शिद करीम फरमाते हैं, देखा गया है कि गुंगा आदमी अपने होंठों की खफीफ जुम्बिश से सब कुछ कह देता है और समझने के अहल सब कुछ समझ जाते हैं। देखें वहां गूंगे के साथ जब आप बात करते हैं तो आवाज की कोई लहरें इंटरेक्ट नहीं करती, तो फिर ये वो मफाहिम कैसे एक दूसरे को ट्रांसफर होते हैं? हम कहते हैं वो बॉडी लैंग्वेज से, नहीं, असल में बॉडी लैंग्वेज हो या टंग से, ये जबान से, आप जो भी जबान बोल रहे हैं इस मतलब टंग से जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो बेसिकली अना की लहरों की ट्रांसफरेंस का जरिया है। अब ये तरीका भी पहले तरीके का अक्स है। जानवर आवाज के बगैर एक दूसरे को अपने हाल से मुत्तला कर देते हैं, यहां भी अना की लहरें काम करती हैं। सो मच सो के दरख्त आपस में गुफ्तगू करते हैं और ये गुफ्तगू सिर्फ आमने सामने के दरख्तों में ही नहीं होती बल्कि दूर दराज ऐसे दरख्तों में भी होती है जो हजारों मील के फासले पर वाक़ हैं। और यही कानून जमादात में भी राइज है, कंकरों पत्थरों मट्टी के जर्रों में मिनोअन इसी तरह तबादला ख्याल होता है। अब आप सोचते हैं कि जी ये कोई बड़ी अजीब बात है, लेकिन आप जरा सा गौर करें कि अब नमक को देखते हैं तो आपको कैसे पता चल जाता है कि ये नमक है? जी मेरा सबका तजर्बा मेरा इलम बता रहा है। हाँ तो नमक की अना की लहरें आपकी जात की लहरों ने वसूल की और उसके खासियतों से आगाह होकर उसका नाम रख दिया, ये है कानून। इसके बाद ये अगला एक छोटा सा है कि एक लाशऊर अंबिया इकराम और रूहानी ताकत रखने वाले इंसानों के कितने ही वाकयात इसके शाहिद हैं कि सारी कायनात में एक ही लाशऊर कार फरमा, उसके जरिए गैब और शहूद यानी जो हमें नजर आ रहा है या हमें नजर नहीं आ रहा, शहूद कहते हैं जो दिख रहा है, गैब जो नहीं दिख रहा, उसके जरिए गैब और शहूद की हर लहर दूसरी लहर के मानी समझती है। गौर करें, ये कानून बता दिया कि हर लहर दूसरी लहर के मानी समझती है। इसी को मानवीयत का है, इसी को फिरासत का है, इसको समझने को फिरासत कहते हैं। और हर लहर जो दूसरे को मुत्तला कर रही है वो मानवीयत है। अब चाहे ये दोनों लहरें कायनात के दो किनारों पर वाकया हों, यानी हर लहर दूसरी के मफहूम को समझती है, चाहे ये पोल्स अपार्ट हो, यूनिवर्स की एक सिरे पे एक लहर हो दूसरे सिरे पे दूसरी, तो भी वो दोनों एक दूसरे के मीनिंग्स को समझती हैं। गैब व शहूद की फिरासत और मानवीयत, गैब व शहूद की फिरासत यानी उसको समझने की सलाहियत और उसकी मानवीयत यानी उसके अंदर जो मीनिंग्स हैं, ये कायनात की रगे जा हैं, ये है कायनात की असल रगे जा। अगर हम अब चीजों की मानवीयत को समझना सीख लेंगे तो गोया हम अपनी फिरासत से काम लेते हुए मानवीयत से आरास्ता होते चले जाएंगे या मानवीयत को जानते चले जाएंगे तो हम कायनात को समझ लेंगे। हम इस रगे जा में जो खुद हमारी अपनी रगे जा भी है, यानी मानवीयत और फिरासत सिर्फ कायनात की रगे जा नहीं है, खुद आपकी अपनी रगे जा है। अगर आप खुद को समझने पे तुल जाएं और अपने एक एक चीज की मानवीयत को आपने एक्सप्लोर कर लिया, तो आपकी फिरासत कितनी बढ़ गई। हम उस रगे जाम में जो खुद हमारी अपनी रगे जाम भी है, तफक्कुर और तवज्जो करके, दो लफ्ज है, तफक्कुर करना और तवज्जो देना, दोनों जरूरी हैं। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लें ये नहीं समझ आएगा। आप कितना भी तफक्कुर करें, तवज्जो जरूरी है। तवज्जो है, तफक्कुर नहीं है तो भी अधूरी है बात। तो तफक्कुर और तवज्जो करके अपने सयारे और दूसरे सयारों के, यानी जिस सयारे पे आप रहते हैं उसको, और दूसरे सयारों के आसारो अहवाल का इंकशाफ कर सकते हैं। गौर करें, रूहानी बंदे की निगाह सिर्फ अपनी जात से वाकिफ होने के बाद किस दर्जा वसत इख्तियार कर लेती है कि वो अपनी जात की लहरों की मदद से दूसरी लहरों की, चूंकि मानवियत को समझती है, लिहाजा उसकी फिरासत फिर उसको दूसरे सयारों के आसारो अहवाल उस पे मुनकशिफ होते हैं और वो आगे बता सकते हैं। इंसानों और हैवानों के तसव्वुरात, यानी इंसान क्या सोच रहे हैं, उनके क्या तसव्वुरात हैं, या जानवर के जहन में क्या चल रहा है, ये जिन्नात और फरिश्तों की हरकत व सकनात और नबातात और जमादात की अंदरूनी तहरीकात मालूम कर सकते हैं। ये है अना की लहरों से वाकफियत का की रेंज और फायदा, कि आप अपनी जात से, अपनी अना से वाकिफ होने के बाद न सिर्फ इंसानों बल्कि हैवानों के भी तसव्वुरात को समझ सकते हैं। ये फरिश्ता, ये शेर के जो तसव्वुरात थे वो ताजुद्दीन बाबौलिया ने कैसे समझे, इसी तरह वो लोगों के मसले कैसे हल करते थे, इसी तरह हजरत कलंदर बाबौलिया ने कितने इंसानों के मसाइल हल किए। तो ये उनके तसव्वुरात में जो कमी बेशी होती है उसको वो जांच लेते हैं। इसी तरह वो जिन्नात और फरिश्तों की हरकत और सकनात, ये तीन कैटेगरीज हैं, इंसानों और हैवानों के तसव्वुरात, जिन्नात और फरिश्तों की हरकत और सकनात के वो क्या कर रहे हैं, और नबातात और जमादात की अंदरूनी तहरीकात। अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आप देखते हैं कि ये दरख्त है तो आपको उसकी अंदरूनी तहरीकात, यानी ये पता चल जाता है ये किस काम आ सकता है, ये किस बीमारी में काम आ सकता है, इससे क्या चीज़ें बन सकती हैं, ये सब उसकी, ये आपकी अना, क्योंकि उसकी अना को जानती है इसलिए वो अपनी इत्तलात आपको दे देता है। इसको कहते हैं अंदरूनी तहरीकात। हजूर मुर्शिद करीम ने फरमाया, मुसलसल तवज्जो देने से जहन कायनाती लाशऊर में तहलील हो जाता है, कायनाती लाशऊर में तहलील हो जाता है, और हमारे सरापा का, ये सर से पैर तक, और हमारे सरापा का ये मस्नूई पर्त जो अना की गिरफ्त में है उससे आजाद होकर, ये जो हमारी महदूद सी अना जो सिर्फ सरापा तक ही महदूद है, उसकी गिरफ्त से आजाद होकर फिर जरूरत के मुताबिक हर चीज देखता समझता और जहन में महफूज कर देते हैं। अब इस आखिरी जुमले में मेरा दोबारा सुने, नंबर एक, मुसलसल तवज्जो देने से जहन, रू ने कहा जहन कायनाती लाशऊर में तहलील हो जाता है। अब देखें, एक है आपका इनफरादी शऊर, फिर एक है नोई शऊर, फिर एक कायनाती शऊर, और फिर एक है कायनाती लाशऊर, यानी गोया अल्लाह का जहन। ये चार दर्जे, पहला इनफरादी, दूसरा नोई, तीसरा कायनाती, और चौथा कायनाती लाशऊर, यानी मुसलसल तवज्जो देने से इसी को कुरान ने कहा अल्लामा बिल कलम, कि हम कलम के जरिए सिखाते हैं। तो कलम से मुराद वहाँ तवज्जो है। तो मुसलसल तवज्जो देने से जहन कायनाती लाशऊर में तहलील हो जाता है, यानी उसमें डिसॉल्व हो जाता है, यानी उसका हिस्सा बन जाता है। और क्या होता है कि फिर हमारा सरापा का ये जो मसनूई पर्थ हमने अपने ऊपर तारी किया हुआ है, अना उसकी ग्रेस से आज़ाद होकर फिर ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक यानी जितना उसको चाहिए उसके मुताबिक, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ को देखता समझता और जहन में महफूज कर देता है। मेरा ख्याल है यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ रुक जाते हैं। अगला मिसाली मुआशरा हम कल इंशाल्लाह, कल तो छुट्टी है, परसों इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। ये सफर कोई सवाल
सर, इसका मतलब तो ये हुआ वो जो बताया गया है कि नाना साहब के पास जो आया था, शेर की भी अपनी भी एक मेमोरी, सोच, एहसास या अपने मालिक की पहचान,
बिल्कुल
कशुर।
जी जी, देखें यहाँ पे जात लफ्ज इस्तेमाल, अना की लहरें, पार्डन
जी,
दोबारा फरमाइए, क्या फरमाया आपने?
मेरा सवाल ये है कि जो बाकी जानवरों में या परिंदों में ये ऐसा शौर नहीं देखने में मिलता,
आपको नहीं मिलता ना, यहाँ तो देखे उन्होंने दिखा दिया। हाँ जी, उन्होंने तो दिखा दिया, उन्होंने तो बता दिया, जाहिर है कि ये उस बंदे को ही दिखता है जिसकी अना की लहरें दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना जानती हैं, जो अपनी अना से वाकिफ हो।
बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक हो गया।
कभी इंसानों में और दूसरी नौ में अना की एक ही मिकदार होती है?
जी जी, अना देखे जात जो है वो सबकी अपनी अपनी जगह है, आगे हर एक चीज की अपनी अपनी मिकदारें हैं। अब कुत्ते की मिकदारें जाहिर है डिफरेंट हैं, इंसानों की डिफरेंट हैं, फरिश्तों की डिफरेंट हैं, जिन्नात की डिफरेंट हैं, पुदीने की मिकदारें अदरक की मिकदारों से डिफरेंट हैं। ये जो मिकदारों का फर्क है यही उनकी जात को मुख्तलिफ बना रहा है। ठीक हो गया ना? जी भाई, वालेकुम अस्सलाम।
सर, व्हाट इज ये जो अना है, अना इसकी पहचान कैसे, वो मुराकबे के जरिए ही है?
ये लव मैं है ना, मैं इसी को अना कहते हैं, इसी को जात कहते हैं। ये कौन सुन रहा है, ये जो बात आप फोन पे सुन रहे हैं, ये कौन सुन रहा है? आप कहेंगे मैं सुन रहा हूँ। आप अगर मुझसे पूछें कि कौन बोल रहा है तो मैं कहूंगा मैं बोल रहा हूँ। तो ये मैं अपनी जात की तरफ, ये लफ्ज मैं जो है मेरी जात की तरफ इशारा है। हमारे यहाँ एक अजीब चक्कर चला दिया कि मैं को खत्म करो। असल में मैंने हजरत मुर्शिद करीम से ये सवाल पूछा कि जी मैं को कैसे खत्म करो। ये जुमले सुन सुन के ही हम बड़े हुए थे कि अपनी मैं को खत्म करो। हजूर मुर्शिद करीम ने मेरी तरफ देखा और कहा कि भाई खाना मैंने खाया, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि खाना आपने खाया। गौर करें किस साल सादगी से उन्होंने मेरे उलझे हुए तसव्वुरात की गिरह खोल दी। अगला जुमला ये फरमाया कि हाँ अनानियत नहीं होनी चाहिए, यानी अपनी मैं का ओवर एग्जर्शन जो है इसको दूसरों पे लागू करने की ख्वाहिश ये नहीं होनी चाहिए। आप जो भी हैं आप खुद को डेवलप कर सकते हैं, ये सलाहियत इंसानों को अता हुई है। असल में सारा खेल क्या, अपनी जात को डेवलप करना। हजूर सलाम ने इसी को नफ्स का है, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, यानी ये लफ्ज फकद पे मैंने इतनी क्यों चीख मारी, साफ कहा कि जो खुद को जान लेता है सिर्फ वो जान सकता है अपने रब को। अब समझ आया इसकी हिकमत? अगर मैं खुद अपनी मैं से वाकिफ नहीं, इकबाल ने इसी का बाजा बजाया कि जी खुद ही तू अपनी खुद ही को पहचान, खुद 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 को पहचान, वो खुद को पहचान उसने खुद ही कह दिया, वो सारे चकरा के रह गए कि पता नहीं क्या बातें कर रही है। कुरान बेसिकली आपसे यही फरमाइश कर रहा है कि आप खुद को जान लें आपके अंदर। मैं आपको एक दफा मिसाल दोबारा अर्ज कर देता हूं, आप समुंदर के पानी से एक गिलास भर लें, एक गिलास समुंदर के पानी से भरें, आप कितने पानी के गिलास भर सकते हैं? 1,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 1,50,000, 1 करोड़, 1 खरब, 10 खरब, क्या समुंदर का पानी खत्म हो जाएगा? लेकिन हर गिलास में जो पानी है उसके अंदर सिफात किसकी है? समुंदर की है ना, सिवाय वुसत और गहराई के, सिवाय वुसत और गहराई के सारी सिफात है, हाँ या नहीं? अगर जो भी गिलास, जो भी पानी है वो अपनी सिफात को जान लेगा तो वो क्या इरफानी तो हासिल कर रहा है? अगर मैं अपने मतलब मैं एक वो समुंदर के गिलास का एक पानी हूं, अगर मुझे अपनी केमिस्ट्री की एनालिसिस आती है, मैं समझ गया हूं कि मैं क्या हूं, तो मैं गोया पूरे समुंदर को समझने के काबिल हो गया ना। अब जब मैं वापस समुंदर में डाला जाऊंगा तो क्या होगा? मुझे उसकी वुसत और गहराई का इजाफी एहसास होगा।
सही।
ये मिसाल पे गौर कीजिएगा, ठीक है जी? जी जनाब, हो गया टाइम?
जी